समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत।
और पूरे आधे घंटे हम दोनों रहेंगे आपके साथ, देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। और आज हम आपको बता दें, आज है खास दिन, विश्व मुस्कान दिवस यानी वर्ल्ड स्माइल डे।
वेल यस फरहत, स्माइलिंग कैन इन्फ्लुएंस योर फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी, इवन इफ इट फील्स अननेचुरल और इवन इफ इट्स फोर्स्ड, वेदर और नॉट योर स्माइल इज जेन्युइन, इट स्टिल सेंड्स द मैसेज दैट लाइफ इज गुड एंड स्माइलिंग It can make you feel happy.
जी बिल्कुल शगुन, मुस्कुराहट न केवल हमारे चेहरे को रोशन करती है बल्कि ये हमारे आसपास के लोगों को भी खुशी और सकारात्मकता प्रदान करती है।
इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियां।
तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि पूरे घंटे, जो आधे घंटे हम आपके साथ हैं, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहिए।
सो लिसनर्स, देयर इज अ गुड चांस दैट योर मूड विल चेंज फॉर द बेटर, सो ट्राई दिस टेस्ट, स्माइल। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग नेगेटिव विदाउट लूजिंग द स्माइल। इट्स वेरी हार्ड, राइट? यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू फील पॉजिटिव व्हाइल यू आर स्माइलिंग।
तो आइए अब शुरुआत कर लेते हैं कार्यक्रम की, और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं खबरों का। भारत और चीन सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश अक्टूबर के अंत तक निर्दिष्ट स्थानों पर सीधी हवाई सेवाएं आरंभ करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागर विमानन प्राधिकरणों का ये समझौता भारत और चीन के लोगों के बीच संपर्क और सुगम बनाएगा।
Russian President Vladimir Putin will visit India in December for an annual summit with Prime Minister Narendra Modi, according to the Kremlin. Kremlin spokesman Dmitry Peskov confirmed that the visit is scheduled to take place before the next year. The spokesman added that preparations for the visit are in full swing. This will be the Russian leader's first visit to India since the start of the Ukraine conflict in early 2022. Russian president has said he is looking forward to his upcoming visit to India early December and highly awaits meeting with his dear friend and Russia's trustworthy partner Prime Minister Modi. Speaking at the 2025 Valdai Discussion Club meeting in Sochi, President Putin reaffirmed Moscow's long-standing trust in New Delhi and described Prime Minister Modi as a very reasonable, wise leader, strongly oriented toward the interests of his nation. He praised special relations with India, rooted in historical ties dating back to Soviet era, noting that current trade turnover between the two countries falls short of its true potential. President Putin emphasized the need to build effective, mutually beneficial trade ties well beyond trade. President Putin also highlighted the strong coordination between Russia and India on international political issues, noting that both sides regularly align positions and respect each other's perspectives. In the field of security and defense, Mr. Putin emphasized the deep trust that underpins cooperation, including the joint production of advanced weapon systems, a reflection of the robust and time-tested partnership between the two nations.
और शगुन, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 23 महिला माओवादियों सहित 103 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will hold a meeting in New Delhi today with the newly appointed observers for the Bihar Assembly elections and the by-elections being held in other parts of the country. A briefing meeting of central observers, which includes general, police and expenditure, appointed by ECI for Bihar elections, is scheduled to be held in New Delhi. The full election commission team, led by CEC, will visit Bihar tomorrow and the day after to review the election preparedness for assembly elections. The election commission has appointed 470 central observers for Bihar assembly polls, by-elections in 8 states. The observers, comprising 320 IAS, 60 IPS and 90 officers from the Indian Revenue Service, Indian Railway Account Service and Indian Civil Account Service, they will monitor the electoral process in Bihar and by-elections in constituencies across Jammu and Kashmir, also Rajasthan, Jharkhand, Telangana, Punjab, Mizoram and Odisha.
वस्त्र मंत्रालय ने आगामी खरीफ कपास सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की तैयारियों को बढ़ा दिया है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने खरीफ कपास सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि ये निर्बाध खरीदारी, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। इस वक्तव्य में यह भी बताया गया कि बैठक के दौरान स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के परिचालन मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि रिकॉर्ड 550 कपास खरीदारी केंद्र 11 राज्यों में कार्यरत किए गए हैं। ये केंद्र कपास के अधिक आमद के दौरान उन्नत लॉजिस्टिकल दक्षता और किसानों की अधिक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
Bombay High Court protects Asha Bhosle's personality rights against AI misuse. The Bombay High Court has recently granted renowned playback singer Asha Bhosle will add interim protection of her personality and also her moral rights, restraining artificial intelligence platforms and online marketplaces or commercially exploiting her image or likeness and other attributes. Earlier, legendary singer Asha Bhosle, she had approached the court against several defendants, including Make Inc., an AI company, allegedly offering cloned versions of her voice, Amazon Seller Services Private Limited, and also Flipkart Internet Private Limited and Google LLC. Her petition emphasized that such misuse undermines her reputation and goodwill built over a career spanning 82 years, during which she has recorded songs across genres and then won multiple national and international awards. They include Dadasaheb Phalke Award, Padma Vibhushan and also 2 Grammy nominations.
और स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिक का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। श्री पारिक को अपने जीवन काल में 2 बार जेल जाना पड़ा था। पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और दूसरी बार देश में आपातकाल के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा था। इन कठिनाइयों के बावजूद उनका सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण कभी डगमगाया नहीं। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत छात्र कार्यकर्ता के रूप में की थी। उन्होंने 1940 के दौरान सौराष्ट्र और मुंबई में विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने छात्र कांग्रेस के मुंबई इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवा दी थी।
And now listeners, we have news from the world of sports.
Indian weightlifter Mirabai Chanu has clinched silver in the women's 48 category at the World Championship in Ford, Norway. Chanu lifted a total of 101.99 kg, including 84 kg snatch plus 115 kg clean and jerk to secure second place overall. This marked Chanu's first World Championship since 2022 and her second competition since finishing fourth at the Paris 2024 Olympics. The gold medal went to defending world champion Ri Song-gum from Korea, who lifted a total of 213 kg. At the ongoing World Para Athletics Championships underway in New Delhi, India added 2 more medals, bringing the tally to 4 gold, 5 silver and 2 bronze. Paralympic champion and India's flag bearer Tharambir Nain won silver in the men's F51 club throw with a best attempt of 29.71 meters. Alexander Radicic of Serbia took gold. In the men's discus throw F57, Atul Kaushik secured bronze with a throw of 45.61 meters. Libya's Mahmoud Rajab won the gold. With this, India now stands 7th in the overall medals tally. In cricket, India will resume its first innings at an overnight score of 121/2 against West Indies in the first test of 2-match series at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. KL Rahul on 53 and Shubman Gill on 18 were at the crease when stumps were drawn on day 1 yesterday. Yashasvi Jaiswal made 36. Earlier, electing to bat first, the visitors were all out for 162 in their first innings. For India, Mohammad Siraj took 4 wickets while Jasprit Bumrah took 3. Aishwarya Rai Nigam, Sports Desk.
और श्रोताओ, अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का। तो सबसे पहले शगुन आपको बता रही हैं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या है खास।
यस फरत, एंड आई विल एक्चुअली बिगिन विद चेन्नई ओनली। Michelin, the tire company headquartered in France, is positioning India as a strategic pillar in its global value chain with Osilva, President India and Middle East Africa, he said. The company expects its Indian operations to move beyond catering to the domestic market to becoming a significant supplier of components for its worldwide production network. The tire maker has expanded its manufacturing footprint in India by starting its production of passenger car radial tires at its plant, which is located about 50 km north of Chennai. The expansion, it involves an investment of 686 crore rupees, and then it will create over 200 additional jobs. And with this move, Michelin will now supply locally produced premium car tires in India, reducing the reliance on imports. We are heading now to Bengaluru. Indian social activist and physician Dr. Abhay Bang delivered the 51st Gandhi Memorial Lecture at the Raman Research Institute in Bengaluru. This happened yesterday. The talk was organized to commemorate the 156th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Well, him and his wife also, they have founded the Society for Education, Action and Research in Gadchiroli, Maharashtra. This works in the area of rural healthcare and also community-based health programs. So the title of this lecture, it was Research with People, Experiments of Healthcare Inspired by Mahatma Gandhi. Now listeners, we are heading to Telangana. So, Telangana state, it will soon get 4 new Kendriya Vidyalayas, taking the total number of such schools in the state to 39. Union Coal Mines Minister G. Kitchen Reddy announced the sanction of these schools, and he said the move will expand access to quality primary and secondary education, especially in remote and underserved areas. The new schools, they will come up at aspirational district Bhadradari Kothagudam headquarters, tribal area Mulugu district headquarters, Chelgal in Jagtiyal rural mandal, and also Nagavaram Shivar in Vanaparthi district. So Union Coal Mines Minister, he thanked Prime Minister Narendra Modi and also Union Education Minister Dharmendra Pradhan for supporting educational development in Telangana. He also highlighted that in the last 2 years, the centre has sanctioned 832 PM Shri schools with an allocation of 400 crore rupees. Additionally, about 2000 crore rupees has been released under the Samagra Shiksha Abhiyan to strengthen the school education system. These were the updates from Chennai, Bengaluru, Telangana. Over to you, Farat Tao.
Ji Shagun, sabse pehle shuruaat kar lete hain Rajdhani Delhi se judi khabar se. Mukhyamantri Rekha Gupta kal Bharatiya Yog Sansthan dwara Chhatrasal Stadium mein aayojit Bharatiya Yog Sansthan ke 59th sthapna divas yog karyakram mein shamil hui. Is avsar par Shrimati Gupta ne kaha ki Rashtrapita Mahatma Gandhi ki jayanti par aayojit yog ka ye samuhik abhyas unke jeevan darshan ki smriti ko jeevit karta hai. Unhone Bharatiya Yog Sansthan ko badhai dete hue kaha कि ये संस्थान देश और दुनिया भर में लगभग 4,500 योग केंद्र चलाकर पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने का कार्य कर रहा है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में योग को वैश्विक पहचान मिली है. वहीं दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सेवा पखवाड़ा के तहत बुधवार शाम नेहरू प्लेस मार्केट में स्वच्छोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया. इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रधानमंत्री के देशव्यापी स्वच्छता अभियान के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इसी स्वच्छता के जन आंदोलन के चलते पूरा देश आज खुले में शौच से मुक्त है. अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि जल कल्याण के इन कार्यक्रमों में उनका योगदान देने के लिए स्कूली बच्चों, पार्टी संगठन और व्यापारियों सहित समस्त प्रतिभागियों का बेहद वह जो है आभारपूर्ण है. और उन्होंने स्वच्छता के प्रति योगदान के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की. उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा 151 गंदगी स्थलों को पूरी तरह से समाप्त किया गया है. एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दिल्ली में 16,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं और सैकड़ों आयोजन और स्वच्छता रैलियां भी आयोजित की गई हैं. और इस मौके पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे. और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. यातायात को कम करने के लिए थाने पुलिस आयुक्तालय ने सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस आयुक्त आशुतोष डुम्बे द्वारा जारी इस आदेश में आवश्यक और जल्दी खराब होने वाले सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है. वहीं स्वच्छ हरित उत्सव और स्वच्छता अभियान की स्वच्छता के लिए वकालत पहल के तहत वसई विरार नगर निगम ने कचरे से कला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को बेकार पड़ी सामग्री से टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माझी लाडली बहन योजना के बारे में विपक्ष की कड़ी आलोचना खारिज कर दी है। उन्होंने विरोधियों पर जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। और अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने आज दक्षिण बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, बर्धमान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कल के बाद से दक्षिण बंगाल में बारिश कम हो जाएगी। कोलकाता में भारी बारिश का अनुमान है और शुक्रवार से उत्तर बंगाल के जिलों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र की खराब स्थिति के कारण मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बारिश होगी और न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Chennai again, it is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru again, generally cloudy sky with light rain. Minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad again, generally cloudy sky, light rain. The temperature, it will hover between minimum of 22 degrees and maximum of 28 degrees Celsius there.
और शगुन मौसम के बाद हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड स्माइल डे की। हमने शुरुआत में अपने श्रोताओं को ये तो बता दिया कि स्माइल जो है, यानी मुस्कुराहट जो है, वो क्यों जरूरी है।
Yes.
तो आइए अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं।
Well, World Smile Day is celebrated on the first Friday of October each year. The day it was created by Harvey Ball, a commercial artist from Worcester, Massachusetts, who designed the iconic smiley face symbol. This happened in the year 1963.
और हार्वे बॉल ने मुश्किल समय में सद्भावना उत्साह बढ़ाने के लिए एक स्माइली चेहरा भी बनाया। जल्द ही स्माइली चेहरा दुनिया भर में एक लोकप्रिय प्रतीक बन गया और 1999 में बॉल ने लोगों को ज्यादा मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व मुस्कान दिवस की स्थापना की। तो आइए एक प्यारा सा ये गीत भी सुन लेते हैं।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
So listeners, a smile can brighten someone's day, make them feel good about themselves and even reduce stress. I believe we are doing that for you. It is a day to promote acts of kindness and to encourage people to smile and then make others smile. Did you know, listeners, that when you smile, you create the power to lower your own stress and then strengthen your immune system. How wonderful.
जी बिल्कुल, पूरे दिन जो है वो अगर एक हंसी आपके काम आ जाए तो इससे बुरा क्या होगा।
Right.
इस विश्व मुस्कान दिवस पर क्यों ना स्वस्थ जीवन के लिए हम सब मुस्कुराएं और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि ये हमें दर्शाता है कि हम कितने मिलनसार हैं। ये दूसरों से जुड़ना आसान बनाने में भी मदद कर सकता है।
So today let's make an effort to smile more and to make others smile as well.
और फिर से एक प्यारा सा एक और गीत।
बार मुस्कुरा दो, वहां से उठे हैं कदम याद रखना, मोहब्बत की पहली कसम याद रखना, कहां से उठे हैं कदम याद रखना, मोहब्बत की पहली कसम याद रखना।
जी बिल्कुल, इसी मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत की पहली कदम याद रखना। और अंजुम लुधियानवी कहते भी हैं कि धूप निकली है बारिशों के बाद, वो अभी रो के मुस्कुराए हैं।
वेल सेड, वेल सेड, वंडरफुल।
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। और आज ही के दिन 1735 में फ्रांस और छठे केरल सम्राट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
In 1932, Iraq won its independence and Iraq was admitted to the League of Nations as an independent state.
1942 में जर्मन रॉकेट वैज्ञानिक वर्नर वॉन ब्राउन के दिमाग की उपज भी उपज की गई।
In 1952, the UK tested its first atomic bomb. The test, it was called Operation Hurricane. It took place at the Mount Bello Islands in Australia. And with this, Britain became the third nation to join the nuclear club. It marked the start of its nuclear weapons program.
और वहीं शगुन 1942 में ही V2 मिसाइल जर्मनी के बाल्टिक तट से दूर हुई पीन मुंडू द्वीप से सफलतापूर्वक दागी गई और इसने 118 मील की दूरी तय की। ये युद्ध में असाधारण रूप से घातक साबित हुई और युद्धोत्तर युग की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का ये अग्रदूत बनी।
In 1955 now, the Guinness Book of Records, it made its debut and the first edition of it in Great Britain, it quickly proved to be a hit and now known as the Guinness World Records Book, the annual publication features a wide range of feats related to humans and also animals.
और वहीं 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी 45 साल बाद फिर से एक हुए। शीत युद्ध के चार दशकों के विभाजन और जर्मन चांसलर हेलमुट कोल के दबाव के बाद सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव नाचो के भीतर एकीकृत जर्मनी पर सहमत हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 में आज ही के दिन जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ। और इतिहास के बाद आइए अब हम याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध ज्योति प्रकाश दत्ता को, जिनका आज जन्मदिन है। भारतीय सिनेमा में जब से जेपी दत्ता का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने बॉर्डर, LOC करगिल और उमराव जौ जैसी भव्य फिल्में आ जाती हैं। तो आइए सुन लेते हैं सबसे पहले फिल्म बॉर्डर का ये प्यारा सा गीत।
पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
हिंदी सिनेमा में जेपी दत्ता ने बहुत कम फिल्में बनाई, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा सबसे हटकर होती हैं। देशभक्ति और जंग पर आधारित फिल्में बनाने के कारण ही जेपी दत्ता को सबसे अलग एक बेहतरीन सफल निर्माता निर्देशक भी माना जाता है। तो सन 2006 में आई फिल्म उमराव जान, जिसमें अभिषेक ने और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया, तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म से ये प्यारा सा गीत।
Yes, Farhat was telling us about J.P. Datta. Listeners, moving on, today we are also remembering Woodrow Wilson Guthrie. Well, the singer, songwriter and composer, widely considered one of the most significant figures in the folk music in the American arena. His work, it focused on themes of socialism and has inspired many generations, well, politically also and musically, with songs such as This Land Is Your Land and other songs as well. He wrote hundreds of country, folk and children's songs along with ballads and also improvised works. And the song which I have chosen, this is Lindbergh.
Mr. Charlie Lindbergh, he flew to old Berlin. Got him a big iron cross and he flew right back again to Washington, Washington. Mrs. Charlie Lindbergh, she come dressed in red. Said, I'd like to sleep in that pretty White House bed in Washington, Washington.
और आज ही के दिन हमें भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली ने अलविदा कहा। यही नहीं, कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी कादम्बिनी गांगुली को ही प्राप्त है।
Well, yes, she was the first woman to gain admission also to Calcutta Medical College. This was in the year 1884. She subsequently trained in Scotland and then established a successful medical practice in India.
जी बिल्कुल शगुन और गांगुली ने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की लचर स्थिति पर भी काफी कार्य किया. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी बहुत प्रभावित थी. उनमें देशभक्ति की भावना बंकिम चंद्र की रचनाओं से ही जागृत हुई थी.
Listeners, today we are also remembering another musician which I found out today, Benjamin Orr, the musician, the bassist, co-lead vocalist and co-founder, the band name. It is The Cars. He sang lead vocals on several of their hits and people call him a legendary singer, a vocalist, and he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. There is a song which is very, very dear even to my heart and fans love it across the world. This is This Time Around.
So many times disappointed, thrown about with a doubt you could never see, and out of nowhere it sounded. Something's happened. Someone happened to hear.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी अमृतलाल बेगड़ का. वे नर्मदा नदी समग्र के प्रमुख थे. उन्होंने नर्मदा संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई. अमृतलाल बेगड़ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया. उन्होंने नर्मदा की 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की. उन्होंने नर्मदा अंचल में फैली बेशुमार जैव विविधता से दुनिया को परिचित करवाया और 1977 में 47 साल की उम्र में नर्मदा परिक्रमा करनी शुरू की जो 2009 तक जारी रही.
Well, another musician that I found out, Namaya Curtis Kip James. This time I am talking about a songwriter. His lyrics, they are wonderful, and all of this, his music, it stated coupling an oddball guitar tuning which was set against falsetto vocals, very high vocals. Kip James' early recordings, they could make the hair stand up on the back of your neck. This was said, like other musicians also tell, used to say that about him. His guitar playing is noted for its dark, very dark minor key sound, which is played in open D minor tuning. This is specifically a technical word that I am using, D minor tuning. I was telling you about Namaya Curtis Kip James, the songwriter.
और अब हम याद कर रहे हैं उड़ीसा के समाज सेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण साहू को. वे 1947 में उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए. वे भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे. लक्ष्मी नारायण साहू संविधान का मसौदा तैयार करते समय अपने उग्र और तथ्यात्मक बहस के लिए जाने जाते रहे. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उड़ीसा के इतिहास पर उनके कार्य और लेखन के लिए उन्हें इतिहास रत्न की उपाधि भी दी गई.
Listeners, today we are also remembering Stephen Ray Vaughan. Well, today it's his birth anniversary. Stevie Ray Vaughan, his abbreviated name is SRV. Well, he's known as the frontman of the blues rock trios, which was Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. His mainstream career, it spanned only 7 years. He's considered one of the most influential musicians in the history of blues music and one of the greatest guitarists of all time. Let's listen into first of his tracks. Well, he began playing guitar at the age of 7. Initially, he was inspired by his own brother. His brother's name is Jimmy. In 1972, then he dropped out of high school and then moved to Austin, where he began to gain a following after playing gigs in the local club circuit. This is how he started. And then he joined forces with Tommy Shannon on bass. He was also a bassist, and Chris Layton on drums. As Double Trouble, his band came into four in 1978. Another song, let's listen into that. This is Telephone Song.
Mm. और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कहना होगा हमें आपसे अलविदा, और एक बार फिर से आप सभी को वर्ल्ड स्माइल डे की शुभकामनाएं। स्वस्थ और खुश रहना है तो अभी से मुस्कुराना शुरू कर दें, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
वेल सेड फरहत, कीप स्माइलिंग लिसनर्स, वी ट्राई टू मेक यू स्माइल बाय आवर प्रोग्राम टुडे। थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन, वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे।
इसके साथ ही दीजिए फरहत और शकुन को इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।